नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विशाल ज्ञान सागर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।
जी,
ये उनकी 1988 से 1990 के बीच रची गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला की एक खास पुस्तक है, जीवन देवता की साधना आराधना।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने स्वयं, जैसा उन्होंने वंदनीय माताजी से वसंत पंचमी 1990 को कहा भी था कि उनका भौतिक शरीर शायद ना रहे पर उनका ज्ञान शरीर, मतलब ये जो क्रांतिधर्मी साहित्य है, ये हमेशा जीवित रहेगा और इसे जन जन तक पहुंचाना है, ये उनका आग्रह था।
बिल्कुल, ये ज्ञान शरीर ही उनका असली स्वरूप है, ऐसा वो मानते थे।
जी, और इस पुस्तक का जो केंद्रीय विचार है वो सचमुच बहुत क्रांतिकारी है।
क्या है वो विचार?
कि ईश्वर सिर्फ भेंट पूजा या गुणगान से प्रसन्न नहीं होता, असल में वो हमारे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने से, उसमें आदर्शों को उतारने से प्रसन्न होता है।
अच्छा, यानी बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदरूनी बदलाव पर जोर है।
एग्जैक्टली, तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि ये जीवन को ही देवता मानकर उसकी साधना आराधना कैसे की जाए।
ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है।
हाँ,
इसे पूज्य गुरुदेव एक व्यवहारिक मार्ग बताते हैं। तो उनका मुख्य तर्क क्या है? साधना करें तो किसकी करें?
हाँ, देखिए, सवाल यही है, साधना किसकी? और उत्तर बहुत सीधा है, अपने जीवन की। इसी जीवन को ही देवता समझकर चलना है।
जीवन को देवता समझना।
जी, और ये कोई भविष्य का सौदा नहीं है कि आज पूजा करेंगे तो कल फल मिलेगा। ये तो इस हाथ दे उस हाथ ले जैसा है।
अच्छा, तत्काल फल।
हाँ, बिल्कुल तत्काल। आप जीवन को संवारते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं और फल तुरंत मिलते हैं, जैसे मन का सुकून, आत्मसंतोष, समाज में मान सम्मान और हाँ, दैवीय कृपा भी।
ये बात बहुत दिलचस्प है कि फल तत्काल मिलते हैं। आमतौर पर तो भविष्य के लाभ या अगले जन्म की बात होती है, तो इस जीवन साधना का आधार क्या है, दर्शन क्या है इसके पीछे?
इसका आधार गहरे तत्व ज्ञान में है। आप ऐसे समझिए जैसे पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप, एक माइक्रोकॉस्म, परमाणु है। वैसे ही उस परम सत्ता का, उस परमात्मा का समग्र प्रतीक हर जीव है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है।
परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है।
जी, सारे देवता, सारी शक्तियां इसी काया में, इसी शरीर में है। उन्हें बाहर खोजना तो वैसा ही है जैसे वो कस्तूरी मृग।
हाँ, अपनी ही नाभि में कस्तूरी लिए जंगल में खुशबू ढूंढता फिरता है।
बिल्कुल, तो आत्मबोध, खुद को जानना, यही असली कुंजी है।
और इस आत्मबोध को पाने के लिए, इस जीवन साधना को जीने के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक त्रिवेणी संगम सुझाया है, उपासना, साधना और आराधना।
हाँ, ये तीन स्तंभ हैं।
तो उपासना से शुरू करते हैं। उपासना का क्या अर्थ है यहाँ? क्या ये वही पूजा पाठ है जो हम आमतौर पर समझते हैं?
नहीं, यहाँ उपासना का अर्थ थोड़ा गहरा है। उपासना मतलब ईश्वर के समीप बैठना, पर ये शारीरिक निकटता नहीं है।
तो फिर
ये मानसिक और भावनात्मक निकटता है। उत्कृष्ट चिंतन करना, अपने मन में ऊंचे आदर्शों को जगाना, अच्छी भाव संवेदनाओं को महसूस करना, यही असल उपासना है। ये अपने भाव जगत को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है।
अच्छा, तो ये मन और भावों के स्तर पर काम हुआ। फिर दूसरा स्तंभ है साधना। इसे जीवन साधना या चरित्र निर्माण भी कहा गया है। इसमें क्या क्या आता है?
साधना यानी अपने आप को साधना, अपने आप को तराशना। इसमें सबसे पहले आता है संयम।
संयम? किस तरह का संयम?
हर तरह का, अपने खान पान पर, रहन सहन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। फिर आता है अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना, अच्छे गुणों को अपने अंदर विकसित करना, और जो बुरी आदतें हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना। अपने व्यक्तित्व को पवित्र बनाना, प्रामाणिक बनाना और प्रखर बनाना, यही साधना है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि चरित्रवान व्यक्ति ही सच्चा भक्त बन सकता है।
उपासना हो गई, साधना हो गई, और फिर तीसरा है आराधना। इसका क्या स्वरूप बताया है पूज्य गुरुदेव ने?
आराधना का अर्थ है सेवा, परोपकार, लोकमंगल के कार्य। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये जो पूरा संसार है, ये उस विराट ब्रह्म का ही साकार रूप है।
हाँ,
तो इस संसार में रहने वाले प्राणियों की, समाज की, परिस्थितियों की बेहतरी के लिए जो भी हम करते हैं, वही सच्ची आराधना है। ये सिर्फ दान दक्षिणा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज सुधार, पर्यावरण की रक्षा, मतलब जन कल्याण के सभी काम शामिल हैं।
ये मार्ग उपासना, साधना, आराधना सुनने में तो बहुत शक्तिशाली और सीधा लगता है, पर इस पर चलना उतना आसान तो नहीं होगा। क्या पूज्य गुरुदेव ने इसमें आने वाली कुछ बाधाओं का भी जिक्र किया है?
हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर तीन मुख्य बाधाएं बताई हैं, लोभ, मोह और अहंकार।
लोभ, मोह, अहंकार।
जी, ये हमारे अंदर के ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लोभ पर विजय पाने का तरीका है सादा जीवन, उच्च विचार और ईमानदारी। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की जो इच्छा है उसे छोड़ना।
और मोह, मोह तो अक्सर स्वाभाविक माना जाता है, परिवार से लगाव, इसे कैसे जीतें? यहाँ वसुदेव कुटुंबकम वाली बात कैसे लागू होती है?
देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पारिवारिक कर्तव्य जरूर निभाने हैं, लेकिन उनमें ऐसे नहीं उलझ जाना कि हम समाज के प्रति अपने बड़े कर्तव्य भूल जाएं। मोह क्या करता है? वो हमारी आत्मीयता को, हमारे अपनेपन को कुछ लोगों तक सीमित कर देता है।
हाँ, सही बात है।
इसे व्यापक बनाना है। आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सबको अपने जैसा समझो, सबके दुख में दुखी, सबके सुख में सुखी, यही मोह पर विजय है। और तीसरा है अहंकार।
अहंकार यानी ईगो।
हाँ, अपनी विद्या का, धन का, पद का घमंड, दिखावा, फिजूल खर्ची, ये सब अहंकार के ही रूप हैं, और ये हमारी प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसे केवल विनम्रता से ही जीता जा सकता है। इन तीनों, लोभ, मोह, अहंकार, इन भवबंधनों से मुक्ति पाना ही वास्तव में मोक्ष है।
इन बाधाओं को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी साधना को, इस जीवन दृष्टि को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योग का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया है, जिसके चार चरण हैं।
जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक विधि है। पहला चरण है प्रातः आत्मबोध।
प्रातः आत्मबोध।
हाँ, सुबह उठते ही ये सोचना कि आज मुझे एक नया जन्म मिला है, अब इस एक दिन का मैं सबसे अच्छा उपयोग कैसे करूं, दिन भर की एक रूपरेखा बनाना।
अच्छा।
और दूसरा?
दूसरा रात्रि में तत्वबोध, रात को सोते समय ये मानना कि ये एक दिन की मृत्यु है, अब पूरे दिन मैंने क्या सोचा, क्या किया, उसकी निष्पक्ष समीक्षा करना, कहाँ गलती हुई, कहाँ अच्छा किया, गलतियों के लिए अगले दिन सुधार का संकल्प लेना।
ये तो बहुत अच्छा तरीका है आत्मविश्लेषण का।
तीसरा चरण क्या है?
तीसरा है नियत समय पर भजन, मतलब रोज एक फिक्स्ड टाइम पर जब ध्यान के द्वारा आत्मिक ऊर्जा का संचय करना, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए ये महसूस करना कि उनकी दिव्य शक्ति, उनकी ऊर्जा हमारे तीनों शरीरों में, स्थूल, सूक्ष्म और कारण में भर रही है।
स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। और चौथा चरण?
चौथा है मध्याह्न बाद मनन, यानी दिन के दूसरे पहर में, दोपहर के बाद थोड़ा समय निकालकर आत्मनिरीक्षण करना, और ये निरीक्षण चार संयमों के आधार पर हो, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम।
ये चार संयम कौन से हैं?
इंद्रिय संयम, क्या मेरी इंद्रियां बेलगाम तो नहीं हो रही? समय संयम, कहीं मैंने समय बर्बाद तो नहीं किया? अर्थ संयम, पैसा कहीं गलत तरीके से कमाया या फिजूल में तो खर्च नहीं किया? और विचार संयम, मेरे मन में कहीं बुरे, बिखरे हुए या नकारात्मक विचार तो नहीं चल रहे थे? इनकी जांच करके सुधार की योजना बनाना।
ये तो हुई रोज की साधना, क्या इसके अलावा भी कुछ सुझाव है? जैसे कभी कभी ढीलापन आ जाता है रोज के क्रम में।
हाँ बिल्कुल, दैनिक क्रम में आई सुस्ती को तोड़ने और नई ऊर्जा भरने के लिए साप्ताहिक साधनाओं का भी विधान है।
जैसे?
जैसे रविवार को उपवास रख लिया, या कुछ घंटे मौन रख लिया, ब्रह्मचर्य का पालन।
अच्छा।
और साथ ही अर्धवार्षिक साधनाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि के अनुष्ठान। ये सब नियमित अभ्यास को बल देते हैं और हमें पटरी पर बनाए रखते हैं।
और अंत में आराधना पर आते हैं। पूज्य गुरुदेव आराधना का सबसे ऊंचा रूप किसे मानते हैं? सेवा तो है ही, पर क्या कोई सर्वश्रेष्ठ आराधना भी है?
हाँ, वे ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ आराधना मानते हैं।
ज्ञान यज्ञ, इसका क्या मतलब है?
ज्ञान यज्ञ यानी सद्ज्ञान का, अच्छे विचारों का, अच्छी प्रवृत्तियों का समाज में फैलाव करना। उनका मानना था कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है लोगों के विचारों को बदलना, लोकमानस का परिष्कार करना।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
इसके लिए वे युग साहित्य, यानी उनके द्वारा रचित पुस्तकें और विचार, उनके अध्ययन और प्रचार प्रसार पर बहुत जोर देते थे। जैसे छोटे छोटे झोला पुस्तकालय चलाना, घरों में या मोहल्लों में विचार गोष्ठियां करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कहते थे कथनी और करनी की एकता। जो हम कहें, जो अच्छी बातें हम दूसरों को बताएं, पहले उसे अपने जीवन में उतारें। व्यक्ति और समाज की समस्याओं का असली समाधान इसी सच्चिंतन के प्रसार में है।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो पूज्य गुरुदेव का संदेश एकदम साफ है, सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांडों में नहीं है, बल्कि जीवन को ही देवता मानकर खुद को संवारने, अपना चरित्र बनाने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की एक सक्रिय व्यवहारिक यात्रा है। और इसके अच्छे नतीजे, जैसा आपने कहा, तुरंत मिलते हैं।
बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखती है, जिस पर शायद श्रोताओं को विचार करना चाहिए।
क्या सवाल है वो?
यही कि अगर पूज्य गुरुदेव के अनुसार आत्म परिष्कार, खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची आराधना है, और ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, तो फिर हम अपने व्यक्तिगत या सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर निष्क्रिय क्यों रहते हैं, या सिर्फ बाहरी मदद पर, सरकार पर या किसी और पर निर्भर क्यों रहते हैं? हमारी ये निर्भरता कितनी सही है, इस पर सोचना जरूरी